दिन भर 12 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदर। बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न, 57% मतदान का अनुमान।
दुकान है, मोबाइल शॉप का दुकान है। सोच रहे थे कि नेता मेरा जो जिला का हो अच्छा ढंग का काम करे, अच्छा जो गांव को देखे और यही सब देखे शिक्षा पे।
दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, इलाके में दहशत का माहौल।
बच्चों को अगर रात को निकलता डर लगता है कोई आदमी ना पकड़ के ले जाए। अभी कितने यहाँ पे छेड़ते रहते हैं लड़के, दारू पीते हैं यहाँ पे तो लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को। लैटरिन का नहीं, यहाँ पे लैटरिन की भी कोई सुविधा नहीं है, क्या करें, माँ बाप भी बैठे रहते।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के 10 जिलों में 49 विधानसभा सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 57% मतदान हुआ है। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आज मतदान हुआ। बिहार में मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी निगरानी रखी गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस अब भी सीरियाई संकट के समाधान के मुद्दे पर अमरीका, सऊदी अरब और अन्य देशों से सहमत नहीं है। ओएससीई के महासचिव लैम्बर्टो ज़ेनियर के साथ एक साझा प्रेस वार्ता में बोलते हुए सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस कुछ खास शर्तों पर सीरियाई विपक्ष का सहयोग करने के लिए भी तैयार है। सीरियाई सेना की मदद करने के अलावा हम इस तरह हमले कर रहे हैं कि जमीन पर चरमपंथियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सीरियाई सेना मजबूत हो सके। हम सीरिया में वतन परस्त विपक्ष की मदद करने के लिए तैयार हैं अगर वो चरमपंथी विचारधारा नहीं रखते या चरमपंथियों के तरीके नहीं अपनाते। ये थे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कर दिया गया। इसमें स्तंभकार लेखक एजी नूरानी, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर मौजूद रहे। किताब के विमोचन पर कार्यक्रम के आयोजक सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कि मुंबई असहमति और विविधता का सम्मान करती है। शिवसेना के विरोध के कारण इस कार्यक्रम में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इससे पहले सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कालिख पोत दी थी। 2015 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रितानी अर्थशास्त्री एंगस डीटॉन को दिया गया है। उन्हें ये पुरस्कार खपत, गरीबी और कल्याण के विषयों में विश्लेषण के लिए दिया गया है। 69 वर्षीय डीटॉन अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैं। उन्हें करीब 9.5 लाख अमरीकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। मिस्र की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के दोनों बेटों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। जमाल और आला मुबारक को 2011 में उनके पिता होस्नी मुबारक के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। एक न्यायिक अधिकारी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार होने के बाद से अब तक जेल में सजा की अवधि काट चुके हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। पीटीआई ने चुनाव आयोग के हवाले से बताया है कि पहले चरण में 57% मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 6.15% वोटों का इजाफा हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान खगड़िया में हुआ था। यहां 63% वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। पहले दौर में समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिलों में वोट डाले गए। नवादा से सलमान रवि की रिपोर्ट।
सुबह के 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, सागर ने अपना वोट डाल दिया। वो काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
क्या नाम है आपका?
सागर।
ये बताइए कि ये पहली बार आपने वोट दिया?
जी।
कितनी उम्र हो गई आपकी?
मेरी
18 साल के। मज़ा आया पहली बार वोट डालने में? जी। कैसा लगा जब वोट डालने गए तो? क्या सोच कर आए थे कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता है तुम्हें?
तो पहली बार मैं
बिहार में पहले चरण की 49 सीटों के लिए मतदान का वैसा माहौल नहीं था जैसा सत्ता विरोधी लहर में अमूमन देखने को मिलता है। फिर भी ग्रामीण इलाकों में सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ने लगे। इनमें बुजुर्ग भी पीछे नहीं थे। नवादा में प्रजातंत्र चौक के पास वाले बूथ से मतदान कर आए ललन सिंह और सुरेंद्र सिंह से मेरी मुलाकात वहीं के चाय के ठेले पर हो गई। चाय पे चर्चा के दौरान उन्होंने कहा,
क्या शुभ नाम हुआ आपका?
ललन प्रसाद।
और आपका?
सुरेंद्र प्रसाद।
बड़ा इस बार मजेदार है चुनाव बिहार का। 10
साल चाय दें
विरोधी तो दोनों सरकारों के खिलाफ में कोई लहर नहीं है?
अंदरूनी है लहर, काम तो किया है लेकिन वो जो गठबंधन गलत हो गया उससे उनका असर खराब हुआ है।
अगर सरकार भी
अकेले वो रहते ना तो उससे अच्छा तो कोई आदमी नहीं था।
अगर सरकार भी बनती है तो ठीक से चला नहीं पाए।
अरे बाबू
उधर ग्रामीण इलाकों में नौजवानों में भी उत्साह में कमी नहीं थी। कालीपुर गांव के चंदन वोट डालकर आने के बाद काफ़ी जोश में थे।
चंदन कुमार हुआ जी, मैंने वोट डाल दिया। ये फिलहाल में दुकान है, एक मोबाइल शॉप का दुकान है। सोच रहे थे कि नेता मेरा जो ज़िला का वो अच्छा ढंग का काम करे, अच्छा जो गांव को देखे और यही सब देखे, शिक्षा पे। ये मेरा गांव है कालीपुर है, यहाँ तो देखिए बेरोजगारी है, बहुत सारे हैं, बहुत बेरोजगार है।
हाईवे के किनारे के उड़नपुर गांव के दिवाकर सिंह इस बार भी काफ़ी आशान्वित थे। उनका कहना था कि जो उनकी सुनेगा उसे उन्होंने वोट दे दिया है।
नाम क्या है बाबा?
हमारा द्वारका से, अभी सब रिक्शा चलाते हैं। आप तो बूढ़ा हो गए।
वोट डाल दिया आप?
जी हाँ वोट डाल दिए। अच्छा। हमारा लड़का रिक्शा चलाता, हम मुद्दे इसलिए डाल रहे हैं कि जो गरीबों के सुने उससे का सुनेंगे। तुम 1 लाख देगा तो हम 1 करोड़ देंगे। गरीबों के सुनो, जो सुनेगा उसको दे दिए।
और कुछ बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है?
बदलाव आवे, अगर जीत जाएगा तो ज़रूर बदलाव आ सकता है, इसलिए कि ना बेटर हुआ ना सोशलिज्म हुआ।
हालांकि शुरुआती दौर में पहले चरण की 49 सीटों पर मतदान की गति काफ़ी धीमी रही मगर दिन चढ़ते लोगों का रुझान दिखने लगा। एक तरफ जहां बांका में मतदाताओं के बीच काफ़ी उत्साह था वहीं समस्तीपुर में शुरुआती तौर पर मतदान सुस्त ही रहा मगर बाद में मतदाता घरों से निकलने लगे और बूथों पर लंबी कतारें लगने लगी। वैसे कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं जमुई में दो गुटों के बीच संघर्ष की खबरें हैं और उसी जगह लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार पर हमले की भी खबर आ रही है। सलमान रावी, BBC नवादा।
बिहार चुनाव पर आज से हम एक विशेष सीरीज बूझिए ना बिहार को शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको अगले कुछ दिनों तक राज्य से जुड़े मिथकों और तथ्यों के बारे में बताते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर पहली कड़ी में जानिए कि क्या लालू प्रसाद ही यादवों के सर्वमान्य नेता हैं।
बूझिए ना बिहार को CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार से आज का सवाल,
क्या लालू यादव यादवों के सर्वमान्य नेता हैं?
अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो ये सही लगता है। इन चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि लालू यादव को सिर्फ यादवों का ही वोट मिल रहा है।
लेकिन क्या ये स्थिति हमेशा से ऐसी ही थी?
जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने बिहार के 1990 के चुनाव के समय, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय लालू यादव बड़े लोकप्रिय नेता थे। चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्हें हर वर्ग, हर समुदाय के लोग चाहते थे कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय लालू यादव की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा थी आज के बजाय। तो लालू यादव जो एक समय बिहार के बहुत लोकप्रिय नेता थे, सभी लोग उनकी लोकप्रियता में उनकी हिस्सेदारी थी, आज लालू यादव की लोकप्रियता नीचे गिर गई है।
आंकड़ों के लिहाज से अगर देखा जाए तो?
अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो इन चुनाव में सिर्फ मात्र कोई 12-13% लोग ही चाहते हैं कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि 90 के दशक में ऐसा नहीं था। 90 के दशक में लगभग 40-45% लोग लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। तो बहुत बड़ी गिरावट है लालू यादव की लोकप्रियता में पिछले 20-25 सालों में।
बूझिए ना बिहार को।
शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंक कर कालिख पोत दी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कुलकर्णी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को उनकी किताब नीदर ए हॉक नॉर ए डव इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के विमोचन के लिए मुंबई बुलाया है। शिवसेना खुर्शीद महमूद कसूरी के किताब के विमोचन का विरोध कर रही है और उसने अपने कार्यकर्ताओं के इस कदम को जायज ठहराया है। एक रिपोर्ट के साथ रोहित जोशी।
ऑनरेबल खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन मुंबई, द ग्रेट सिटी ऑफ मुंबई, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ मुंबई।
शिवसेना कार्यकर्ताओं के स्याही फेंकने के कुछ देर बाद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन सुधींद्र कुलकर्णी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ एक साझा प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि किताब के विमोचन का कार्यक्रम स्थगित नहीं किया जाएगा।
उन्होंने धमकी दी थी कि शिवसेना स्टाइल में हमारे प्रोग्राम को वो डिस्टर्ब करेंगे। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम तो होकर ही रहेगा।
पिछले दिनों मुंबई में पाकिस्तानी मशहूर गजल गायक गुलाम अली के एक कार्यक्रम को अपने विरोध से स्थगित करवाने वाली शिवसेना ने मुंबई में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब नीदर अ हॉक नॉर अ डव एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के विमोचन के कार्यक्रम के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। सोमवार सुबह शिवसेना कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहे सुधींद्र कुलकर्णी पर उस वक्त स्याही फेंक दी जब वे अपने घर से कार में कार्यक्रम स्थल की ओर निकल रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद अपने कार्यकर्ताओं की इस हरकत को जायज ठहराते हुए शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि सुधींद्र कुलकर्णी और उन जैसे कई लोग पाकिस्तान के एजेंट हैं। उन्होंने कहा है कि कुलकर्णी को लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विरोध संवैधानिक दायरों में रहकर किया जाना चाहिए।
वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर भी कोई भी विदेशी भी हो अगर भारत में आकर के भारत का खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया तो सिर्फ किताब को विमोचन को लेकर के किसी को फिजिकली छूना और उस तरह का कालिख फेंकना लगाना ये ठीक नहीं।
शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि वो किताब के विमोचन के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
यही कसूरी है, विदेश मंत्री जब थे तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल जी को आर पार की लड़ाई की भाषा करनी पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मुंबई में रेड कारपेट डालकर स्वागत करना हमारे देश की भावना के खिलाफ है, एक प्रकार से देशद्रोह है।
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा है कि पिछले दिनों में इस किस्म की असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ी हैं और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने एनडीए से जुड़े दलों को सलाह दी है कि वे इस किस्म की हिंसा और असहिष्णुता को अस्वीकार करें।
ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है और कोई भी करता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा कि कम से कम हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की हिंसा की प्रवृत्ति को और असहिष्णुता को फुल्ली अस्वीकार करें।
एक ओर शिवसेना ने किताब के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है, उधर दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाकिस्तानी राजनयिक कसूरी को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया है।
सुधींद्र कुलकर्णी पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्याही फेंकी। ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। शुक्रवार को दिल्ली में 4 साल की एक बच्ची के साथ कथित बलात्कार के बाद रिपोर्टों के मुताबिक 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है और बच्ची पर सर्जरी के बाद डॉक्टरों को उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में बच्ची को अस्पताल से छोड़ दिया जाएगा। हमारे सहयोगी विनीत खरे ने इस मामले पर डॉक्टरों और बच्ची के परिवार से बात की है। मैंने थोड़ी देर पहले उनसे इस मामले की पूरी जानकारी मांगी।
रेहान, ये जो घटना है ये करीब शुक्रवार रात को 7:30 या 8 बजे की घटना है। दिल्ली का एक स्लम सा इलाका है पटरी के पास, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ लोग बैठ के शराब पी रहे थे और वहाँ पर ये बच्ची 4 साल की है, खेल रही थी। इस बच्ची को 10 रुपए की चॉकलेट या चाउमिन देकर बुलाया गया और ये रात में ये घटना हुई है। उसके बाद से बच्ची के जो रिश्तेदार थे, अगल बगल जो लोग रहते हैं, उन्होंने इस बच्ची को देखा। इसके पूरा शरीर जो है खून से लथपथ था और उसको फिर बच्ची को एक अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से इसे रेफ़र किया गया, दिल्ली के केंद्र में एक सरकारी अस्पताल है वहाँ पर बच्ची को ले जाया गया। माँ बाप इसके ले थे वहाँ पर। वहाँ पर हमारी जो बात है इस अस्पताल के AK राय जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे हमारी आज बात हुई है। उनका इस बारे में कहना था बच्ची किस हालत में लाई गई, उन्होंने बताया।
पेशेंट को उसकी माँ लेके आई थी रात को 11:30 बजे 9 तारीख को। जब बच्ची आई थी तो उसके जो यौन के जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो उसके भाग हैं उसमें इंजरी थी। उसके जो लैट्रिन का रास्ता है या बोलते हैं जिसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं, उसमें इंजरी थी। उसको एनेस्थीसिया दे करके और उसमें से जो स्वाब वगैरह लेना होता है वो लिया गया एंड फिर उसकी सर्जरी करी गई है और NS को बाईपास करने के लिए उसकी कोलोस्टमी की गई है, मतलब कि जो बड़ी आंत है उसको बाहर की तरफ खोल दिया गया है। अभी 2 दिन के बाद पेशेंट की कंडीशन, आज जो है पेशेंट को कोई फीवर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पेन नहीं है, पेशेंट इज डूइंग वेल, बहुत अच्छी पेशेंट है वो।
रिपोर्ट्स हैं कि 2 सर्जरी उस पे बच्ची पे हो चुकी है, इसके बारे में बताएं।
सर्जरी एक ही हुई है, 2 सर्जरी किसने कहा आपसे ये?
आप कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला बच्ची की फिजिकल कंडीशन ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकली हाउ शी परफॉर्मिंग, हाउ शी डूइंग? कब तक बच्ची को यहाँ पर रखने का आपका प्लान?
दो हफ्ते बता दिया मैंने आपको।
तो ये तो रही डॉक्टर की बात, आप उस इलाके में भी गए थे, क्या कहना है उस इलाके में रहने वाले लोगों का?
देखिए ये जो इलाका है ये पटरी के पास का एक स्लम सा इलाका है, करीब 8 या 10 हज़ार की आबादी बताई जा रही है। बगल में एक इंडस्ट्रियल एरिया है तो ज़्यादातर लोग यहाँ रहते हैं, वो छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग में काम हो, मिस्त्री का काम हो, उस तरह का काम करते हैं। यहाँ छोटे मोटे शराब के ठेके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर शराब पीते हैं। तो वहाँ की ये घटना है, कई लोग जिनसे हमारी बात हुई आज वो काफ़ी डरे हुए थे इस घटना के बाद से। पुलिस भी क्योंकि बार बार चक्कर लगा रही है, कुछ लोगों को वो डिटेन करके भी ले गई है यहाँ से पूछताछ के लिए, तो काफ़ी भय का माहौल है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये बाहरी लोगों का काम है, लेकिन क्योंकि यहाँ शराब के ठेके हैं और लोग शराब में धुत भी रहता है ऐसा लोगों का कहना, तो इसलिए खासकर महिलाएँ हैं उनमें बहुत चिंता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। हमारी बच्ची की दादी हैं, उनसे बात हुई, वो भी काफ़ी घबराई हुई थी, बहुत डरी हुई थी, चिंता है उनमें बहुत। और वहाँ जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे भी हमारी बात हुई, इनका कहना था
बच्चों को अगर रात को निकलता डर लगता है कोई आदमी ना पकड़ के ले जाए। अभी कितने यहाँ पे छेड़ते रहते हैं लड़के, दारू पीते हैं यहाँ पे तो लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को। लैटरिन का नहीं, यहाँ पे लैटरिन की भी कोई सुविधा नहीं है। बच्चे गाड़ियाँ चलती है, क्या करे, माँ बाप भी बैठे रहते बच्चों के लिए, कहाँ जाए बच्चों को लेके,
खाने के तो कहाँ,
कोई सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, यहाँ के लिए बच्चों को छोड़ने लायक नहीं।
तो ये ज्यादातर ये जो आदमी है मर्द है यहाँ पे क्या करते हैं ज्यादातर? ये सुबह से शाम
सर मर्द तो ये बेलदारी में जाते हैं, कोई मिस्त्रीगिरी में जाते हैं, शाम को आते हैं 8 बजे करीब, खाते पीते हैं और लेट जाते कोठियों में काम करने के लिए। और क्या है गरीबों के लिए, यही है। अगर 2 जने नहीं, 1 जने के कमाने से चलता नहीं है सर जी, ने दोनों मियाँ बीबी को संभालना पड़ता है। और बच्चे हैं यही अपना खेलते रहते हैं आजकल, अब तो जब से ये हो गया कोई बच्चा छोड़ता भी नहीं, अकेले डर लगा रहता है कि हम अपने बच्चों को छोड़कर हमारे बच्चों के साथ ना ऐसा हो जाए।
ये बताइए कुछ पुलिस की तरफ से कुछ विवरण मिला है, कुछ गिरफ्तारी हुई है इस संबंध में?
देखिए पुलिस से हमारी बात हुई, दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता हैं राजन भगत, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि रिपोर्टें आ रही हैं कि करीब 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ना मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं और ना मैं इसको गलत ठहरा रहा हूं। लेकिन पुलिस पर काफ़ी दबाव है। आपको याद होगा 2012 की जो बस में चलती बस में बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद से जब भी इस तरह की ऐसी कोई घटना सामने आती है तो पुलिस पर काफ़ी दबाव रहता है कि वो उसे जल्द से जल्द सॉल्व करे।
ये थे विनीत खरे।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने कहा है कि अंकारा में रैली में बम धमाकों का मुख्य संदिग्ध चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट है। हालांकि किसी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तुर्की की सरकार का मानना है कि 2 पुरुष आत्मघाती हमलावरों ने धमाके किए थे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी से।
तुर्की में शनिवार को एक रैली में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों को सोमवार को दफनाया गया। इस घटना में मरने वालों का सरकारी आंकड़ा 97 बताया जा रहा है, लेकिन आयोजकों में से कुछ लोगों का कहना है कि इस रैली में 128 लोगों की मौत हो गई थी। उधर एक तुर्की टीवी पर बोलते हुए तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाउतोग्लू ने कहा है कि धमाके आने वाले चुनावों को प्रभावित करने के लिए किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जांचकर्ता एक आत्मघाती हमलावर के डीएनए जांच परिणामों का इंतजार कर रहे हैं और वे उसकी पहचान करने के करीब हैं। दाउतोग्लू ने कहा है कि शुरू से ही ये शक रहा है कि ये हमला इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों की ओर से किया गया है। जैसे ही ये घटना घटी, हम पहले ही क्षण से इस्लामिक स्टेट की ओर ही शक कर रहे हैं और इस बारे में जांच की जा रही है। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दाउतोग्लू के शब्द। रैली में शामिल होने आए कुर्द समर्थक पार्टी HDP के कई कार्यकर्ताओं की धमाकों में मौत हो गई थी। HDP नेता सेलाहतीन देमिरतास ने कहा है कि सरकार ने लोगों पर हमला करवाया है। वहीं अंकारा में BBC संवाददाता मार्क लोवेन के मुताबिक आलोचकों का कहना है कि तुर्की की सरकार इस्लामिक स्टेट को बलि का बकरा बना रही है, जिससे सरकार के संदेहास्पद अंशों पर से ध्यान हटाकर चुनाव के लिए समर्थन जुटाया जा सके। उधर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री लग्जमबर्ग में सीरिया के हालातों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में प्रवासी संकट के अलावा सीरिया में रूसी हवाई हमलों पर भी चर्चा की जानी है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा है कि इस बैठक में विदेश मंत्री तुर्की में हुए हमलों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि यूरोपीय संघ और तुर्की का इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थायित्व को लेकर एक ही रवैया है, और हमें इधर शांति की दिशा में एक बहुत मजबूत एजेंडा बनाना होगा। ये थे फेडरिका मोगेरिनी के शब्द। 1 नवंबर को तुर्की में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले जून में हुए चुनाव में कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई थी।
तुर्की में हुए हमले में इस्लामिक स्टेट पर शक। आज सोमवार है और आपको इंतजार होगा अपने पत्रों का। जवाब दे रहे हैं राजेश प्रियदर्शी और स्वाति बख्शी।
आपकी राय के साथ हाजिर हूँ मैं मोहनलाल शर्मा। मेरे साथ चिट्ठियों का पुलंगा लेकर बैठी हुई मुस्कुराती हुई स्वाति बख्शी मौजूद हैं।
और मेरे पास आज पोस्टकार्ड्स नहीं है, ज्यादातर ईमेल्स हैं। आशीष पांडे ने लखनऊ से ईमेल भेजा और लिखते हैं कि BBC अपने आप को भले ही निष्पक्ष कहकर अपनी पीठ थपथपाए, पर कम से कम मुझे BBC हिंदी निष्पक्ष नहीं लगती है। आपकी वेबसाइट पर अक्सर उन्हीं पत्रकारों विश्लेषकों के लेख या विचारों की प्रमुखता होती है जो वर्तमान प्रधानमंत्री का किसी न किसी तौर पर विरोध करते हैं, और आपकी वेबसाइट ऐसे लोगों को एक मंच प्रदान करने का जरिया भर रह गई है।
भाई आशीष पांडे जी, लखनऊ से हैं आप और हमारे कार्यक्रम नियमित तौर पर सुनते हैं, और आज ये जो बात आपने कही है कि वही चुनिंदा नाम आपको हमारी वेबसाइट पर नज़र आते हैं, मैं इससे आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये कहना कि वो लोग जो कि मोदी के खिलाफ बोलते हैं वही हमारी वेबसाइट पर होते हैं, तो ऐसा कतई नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि निष्पक्षता के सारे मानदंडों का पालन करते हुए ऐसी रिपोर्टिंग की जाए जिसमें कि दोनों पक्ष शामिल हों, और ऐसा अगर आपको लगता है तो मैं ये कहूँगा कि भविष्य में हम इस बात का और ध्यान रखें कि आपको एक तरफा रिपोर्टिंग ना लगे।
जी, और अगला मेल प्रदीप सिंह ने भेजा है कुमारगंज फैजाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि 9 अक्टूबर को प्रसारित दिन भर में प्रख्यात संगीतकार रविंद्र जैन के देहावसान पर विदित मेहरा को रिपोर्टिंग के लिए समय कम दिया गया। देश के संघर्षशील और महान विभूति को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं कही जा सकती।
प्रदीप भाई, जहां तक आपकी बात है, हम इस बात से बिल्कुल सहमत है कि उतना समय उन्हें नहीं मिल पाया, और हमारे देश के वाकई काफी अग्रणी संगीतकार थे रविंद्र जैन जी। लेकिन कभी कभी हमारा जो न्यूज एजेंडा होता है वो बड़ा विस्तृत होता है, तो ऐसे में समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस बात को हम संज्ञान में लेते हैं कि उन्हें ज्यादा समय दिया जाना चाहिए।
सत्य प्रकाश शुक्ला का फैजाबाद उत्तर प्रदेश से ही मेल आया है। ये लिखते हैं कि आज विश्व में जिस तरह से कंप्यूटर का चलन बढ़ा है, इसके चलते भारत भी अपने सभी नागरिकों से अपेक्षा रखता है कि कंप्यूटर के ज्ञान में माहिर बने, लेकिन गांव में बैठा व्यक्ति जहां ना बिजली है और ना कोई शैक्षणिक संस्थान, वो किस तरह से अपनी जिज्ञासाओं की संतुष्टि करे? क्या आप कोई ऐसा प्रोग्राम पेश करेंगे जो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में और उनके प्रयोग क्या हैं वो हम जान सकें?
आपका सुझाव निश्चित तौर पर बेहतरीन सुझाव है, और जहां तक हमारी वेबसाइट bbchindi.com है, इसमें तो टेक्नोलॉजी से संबंधित तमाम सारी खबरें आती हैं, लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है, प्रश्न ये कि गांव देहात पे जहां पर कि नेट की सुविधा नहीं है वहां ये चीजें कैसे लागू होंगी। कोशिश करेंगे कि आपका ये सुझाव हमने रख लिया है और निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर भविष्य में कोई कार्यक्रम बना तो जरूर आप उसे सुन पाएंगे।
ये एक और मेल है, मोहम्मद जाकिर एम कलीम ने भेजा है। ये लिखते हैं कि बहुत पुराने श्रोता हैं बीबीसी के, आज 35 साल के हैं और तब से सुन रहे हैं जब 15 साल के थे।
क्या बात।
इन्होंने 1965 युद्ध के 50 साल
रेहान फजल की
जो श्रृंखला थी उसकी तारीफ की है और कह रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, फैला उजियारा की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इनकी शिकायत भी है, शिकायत क्या है, इन्होंने हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित किया है। कहते हैं कि 8 अक्टूबर के कार्यक्रम में मानसी दास ने बशर अल असद कहा था और 9 अक्टूबर के नमस्कार भारत में दिलनवाज पाशा ने जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल को रूसी चांसलर कहा था।
माफी मांगते हैं कि अगर इस तरह की कोई गलती हुई है, जर्मन चांसलर एंगेला मर्कल की जगह अगर उन्हें रूसी चांसलर कहा गया है तो उसकी निश्चित तौर पर हम आपसे सखेद माफी मांगते हैं। भविष्य में इस तरह की गलती न हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और जहां तक प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन की बात है, हम लोग एक तरह के शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं और बशर अल असद शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने इस शब्द को दूसरे तरीके से इस्तेमाल किया है तो वाकई।
आखिर में मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगी, वो गलती जो मुझसे पिछली बार हुई थी, मोहनलाल शर्मा जी आप नहीं थे, राजेश जी थे, मैंने एक मेल जो कि आशुतोष कुमार पांडे का था उसे
जंग बहादुर सिंह गोल पहाड़ी
कहकर पढ़ दिया था। वो शायद मेरे सामने इतने सारे कागज थे जिसकी वजह से वो गलती हुई और मैं बिना शर्त माफी मांगती हूँ उस गलती के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया और अब आपकी राय में बस इतना ही, विदा ले लेते हैं
जी। नमस्कार।
तो ये थे आपके पत्रों के उत्तर और अब कुछ बात की जाए खेल की। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम यकीनन दुनिया की बेहतरीन टीम है लेकिन अपनी ज़मीन पर भारत भी कभी कमज़ोर नहीं रहा। दक्षिण अफ्रीका ने कल जिस अंदाज में भारत को हराया उससे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आदेश मेरे सामने बैठे हैं, बताइए क्या आलोचनाएँ हो रही हैं धोनी की इस पूरे मैच पर?
जी देखिए, बहुत ही तीखी आलोचनाएं हो रही हैं। अजीत अग्रवाल ने तो पहले ही कहा था कि अब समय आ गया कि इस बात पर विचार किया जाए कि धोनी की टीम में अहमियत क्या है, और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी अब ये कहा कि अगर धोनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो यकीनन चयनकर्ता को सोचना होगा। दूसरी तरफ कल भारत के पूर्व ऑलराउंडर और कोच रहे मदन लाल ने भी भारतीय टीम क्यों हारी 2-3 मुख्य बातों पर जिक्र किया। थोड़ी देर पहले हमने उनसे खास बातचीत की।
हमारी बॉलिंग तो ऐसी लग रही है कि जैसे ये ना तो आउट कर पाएंगे ना ही ये रन रोक पाएंगे। ये भी बैड लक थी कि अश्विन ने अपने पूरे ओवर नहीं किए। दूसरा जो है ना, हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत वीक लग रहा है, नंबर 4, 5, 6, 7 है, ये अगर रन नहीं बनाते तो आपका मैच जीतना बड़ा मुश्किल रहेगा। कल भी विराट ने भी नहीं रन बनाए, धोनी ने भी नहीं रन, और सुरेश रैना और स्टोर्ट भी नहीं, तीनों ने रन नहीं बनाए। और जब तक आपके ये जो दिग्गज खिलाड़ी है नहीं चलेंगे तो आप मैच कैसे जीत सकते हैं? ये साउथ अफ्रीका की टीम है, ये श्रीलंका की टीम नहीं है।
और श्रीलंका के खिलाफ भी भारतीय टीम 2-1 से हार गई थी धोनी की कप्तानी में ही। तो निश्चित रूप से अब बुधवार को जब गुरुवार को दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो बहुत दबाव में होगी भारतीय टीम। 2020 सीरीज हार ही चुके हैं। और उधर कल से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच भारतीय खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। बीते रविवार को ही डच ओपन अपने नाम करने वाले अजय जयराम कल क्वालिफिकेशन मुकाबले में खेलेंगे और बुधवार को साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के अलावा पी कश्यप भी अपना दावा पेश करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदेश। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 10 जिलों में 49 विधानसभा सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 57% मतदान हुआ है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस अब भी सीरियाई संकट के समाधान के मुद्दे पर अमरीका, सऊदी अरब और अन्य देशों से सहमत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब का विमोचन मुंबई में किया गया। इससे पहले सुधीर कुलकर्णी के चेहरे पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कालिक पोत दी थी। 2015 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ब्रितानी अर्थशास्त्री एंगस डीटॉन को दिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।